ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराएंगे। ये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहली जुलाई से देश भर में लागू किए गए इन कानूनों का उद्देश्य विधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। कार्यक्रम का विषय है दंड से न्याय के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित और विकसित भारत। कार्यक्रम के दौरान नए कानूनों के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार विजेता समाज के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्मान देश भर में दिव्यांगजनों को प्रेरित करने और मजबूत बनाने में मदद करेगा।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कराना मानव समुदाय में संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्व समुदाय में अपनी दिव्यांग साथियों के सशक्तिकरण की भावना का होना बहुत अच्छी बात है। इस भावना के साथ सभी दिव्यांगजन को सहजता और बराबरी का अनुभव करना पूरा मानवता का कर्तव्य है।
राष्ट्रपति पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर कल भारतीय नौसेना दिवस सहित कई आधिकारिक कार्यक्रमों में भागीदारी करने के लिए 5 दिवसीय ओडिशा यात्रा पर आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में पंडित रघुनाथ मुर्मू की नई प्रतिमा का अनावरण करेंगी और आदिम ओवार जरपा जाहिर का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल सुबह 12वीं सदी में पुरी में निर्मित जगन्नाथ मंदिर जाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए संसद की कार्यवाही का सुचारू रूप से चलना आवश्यक है। विपक्षी सदस्यों द्वारा संसद में किए जा रहे हंगामे पर उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही बाधित होने से सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्षी दलों का होता है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को बाधित करना न तो देश के हित में है और न ही विपक्ष के हित में। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज से सदन सुचारू रूप से चलेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को तथा राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले में राज्य पुलिस की मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। बाद में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक प्रमुख कारोबारी समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके दचेगाम के जंगलों में जारी आतंकरोधी कार्रवाई में आज सवेरे एक आतंकवादी मारा गया। इससे पहले सुरक्षा बलों ने कल देर रात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके में अभियान शुरू किया था। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जंगलों में अभियान जारी है और आतंकवादियों को रोकने के लिए सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को सील कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सऊदी अरब के रियाद में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की COP16 में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रति भारत के व्यापक दृष्टिकोण का उल्लेख किया। सूखे से निपटने पर मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान श्री यादव ने तैयारियों और रोकथाम पर केंद्रित सक्रिय टिकाऊ रणनीतियों के लिए सूखे के प्रति प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया से भारत के परिवर्तन का उल्लेख किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम सोमवार को असफल हो गया। इसराइल ने संघर्ष विराम समझौते के बाद लेबनान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ओमान के मस्कट में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला कल होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।